नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो मे दुष्ट मिथ्यात्व को कर उपशम जेगी शक्तिधार मोह मारियो करूं प्रणाम सदीव करूं प्रणाम सदीव। भाव दीपिका के आधार पर जो ये वर्ष का आयोजन किया है उसके अंतर्गत अपन जो पांचवा खंड है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसके औपशमिक भाव का जो अंतराधिकार है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। औपशमिक भाव में भी औपशमिक सम्यक्त्व का अंतराधिकार है ये। इसके लिए जो है इन्होंने दीपचंद जी साहब ने ये विशेष रूप से मंगलाचरण लिखा है, ये जो अपन ने अभी पढ़ा इसकी अपन ने चर्चा कल करी है 201 और 202 नंबर के प्रश्नों की। 203 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पांच लब्धियों की चर्चा आ रही है। ये पांच लब्धियां क्या हैं? जब भी ये जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव विशेष रूप से, तो उसको पांच लब्धियां अवश्य होती हैं। सादी मिथ्या दृष्टि हो तो उसको भी जो है चार लब्धि तो ठीक हैं, लेकिन पंचम करण लब्धि उसको भी अनिवार्य होती है। और पंचम करण लब्धि है तो चार लब्धियों की भूमिका उसकी या तो पहले से बनी होती है और या फिर उसको फिर से वो प्राप्त करना होता है। क्योंकि दो प्रथमोपशम सम्यक्त में बताया था ना, बीच में असंख्यात वर्षों का काल है, इसलिए जो है उसका स्मरण उसको रहेगा ही। देशना लब्धि आदि का ये कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो है पांच लब्धियां प्रथमोपशम सम्यक्त के पहले होती हैं वो बता रहे हैं। अब ये प्रथमोपशम सम्यक्त है ना, इसलिए ये जो लब्धियां हैं पांच लब्धियां, इनका संबंध भी विशेष रूप से जीव के सम्यक्त भाव के साथ है। मतलब जीव का जो सम्यक्त भाव के लिए जो पुरुषार्थ अनिवार्य है वो पुरुषार्थ की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की गई है। इसमें मतलब जो चारित्र संबंधी पुरुषार्थ है या जो ज्ञान केवल ज्ञान संबंधी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ की बात नहीं है। यहाँ तो अभी अनादि मिथ्या दृष्टि को मुख्यता से बात कर रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि की थोड़ी आवाज देखना, गला पकड़ रहा है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जो है वो अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या अनिवार्य होता है उसकी यहां पर विशेषता कही गई है। क्या है असल में, देखो ये जो सम्यक्त का कार्य भी हो रहा है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त का कार्य भी हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है उद्यम है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए तो ये ऐसा पुरुषार्थ है कि जो उसने अपनी ताजिंदगी माने जब से अनादि काल से जब से वो जीव है तब से उसने ये कार्य नहीं किया है, इसलिए उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ से बड़ा पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ का तो समझ लो उसको सारा खेल ही समझ में आ जाता है। अब तो सिर्फ उसको चारित्र की विशेषता अनिवार्य है उसको, लेकिन यहाँ तो उसको चारित्र तो चाहिए चाहिए, चारित्र भी चाहिए। मैं यही स्थापित करना चाहता हूँ, ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जो सम्यक्त्व तो प्राप्त करना है, तो वो सम्यक्त्व तो जो है वो अकेले मिथ्यात्व के नाश से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए उसको मिथ्या ज्ञान का भी नाश करना है, उसके लिए उसको एक स्तर का मिथ्या चारित्र भी नाश करना है। वो जो है सम्यक्त्व का पुरुषार्थ, ये तो मुख्यतः सम्यक्त्व की है, लेकिन जो पुरुषार्थ है वो त्रिआयामी है। पुरुषार्थ त्रिआयामी समझे, त्रिआयामी माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तीनों का पुरुषार्थ अनिवार्य है इसमें। बिना तीनों के पुरुषार्थ के ये सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए जो जो ये जो कहा गया है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो बहुत ही सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना नहीं होता है। अब चौथे गुण स्थान का भी मोक्ष मार्ग हो या आगे का मोक्ष मार्ग हो, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की अनिवार्यता है। अकेले दो से तो कोई काम ही नहीं होता है। अपन दो से कहें कि एक से कहें कि अकेले सम्यक दर्शन से काम हो जाएगा, अकेले सम्यक ज्ञान से काम हो जाएगा, अकेले चारित्र से काम हो जाएगा, वो दो से काम नहीं होता है, तीनों की अनिवार्यता है। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन के लिए जो चारित्र की अनिवार्यता है, वो चारित्र एक स्तर का चारित्र, उसका नाम सम्यक्त्व आचरण चारित्र, माने सम्यक्त्व के लिए अनिवार्य चारित्र, इसका नाम है सम्यक्त्व आचरण चारित्र। तो वो चारित्र का स्तर वो ही होगा। आप व्रताचरण आदि का जो स्तर है वो स्तर नहीं होगा। इस चारित्र का यदि हम रूप देखें, जो सम्यक्त्व आचरण चारित्र होता है, इस चारित्र का जो रूप है ना, वो आचरण संबंधी नहीं है, व्रताचरण संबंधी नहीं है। इसका जो रूप है वो भावात्मक है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र का जो रूप है वो भावात्मक है, माने भावात्मकता में, जैसे ये अनिवार्य कह रहे हैं पांच लब्धियों में, वो कह रहे हैं कि इच्छोपशम लब्धि का समझ लो तो ज्ञान से संबंध, विशुद्धि लब्धि का संबंध चारित्र से, चारित्र से भाव से है, चारित्र माने भाव से, भावात्मक चारित्र से। विशुद्धि का ऐसा परिणाम होना चाहिए, ऐसी विशुद्धि होनी चाहिए, नहीं होगी तो सम्यक्त नहीं होगा। और ये विशुद्धि मिथ्यात्व अवस्था में चाहिए, सम्यक दर्शन तो बाद में होगा, लेकिन अभी तो उसको मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक्त का, यदि उसको पुरुषार्थ भी करना है, सम्यक्त आगे उत्पन्न भी करना है, तो उसको ऐसा भावात्मक विशुद्धि चाहिए। ये भावात्मक विशुद्धि का नाम चारित्र है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आचरण संबंधी चारित्र है ना, आचरण संबंधी व्रताचरण संबंधी जो चारित्र है वो भी भावात्मक है। भाई आत्मा का तो रोल भावों में ही है ना, ये शरीर की क्रिया में आत्मा का कहाँ रोल है? आत्मा का रोल शरीर की क्रिया में कहाँ है? भावों में ही रोल है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अभी जो ये जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, इसका तो सारा का सारा संबंध ही भावात्मक है। इसमें बाह्य में आप उसको कुछ करते हुए देखो, ये आपको आप सब करते हुए देखोगे, ये भी एक दूसरी बात कह रहा हूं। सम्यक दृष्टि को आप सब करते हुए देखोगे, सम्यक तो सदस्य नहीं, सम्यक के सन्मुख को भी, ये विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि वाले जीवों को भी आप सब करते हुए देखोगे, सारा व्रताचरण पालन करते हुए देखोगे, लेकिन वो व्रताचरण नियम रूप नहीं होगा, वो व्रताचरण प्रत्याख्यान रूप नहीं होगा, वो व्रताचरण अप्रत्याख्यान रूप नहीं होगा। अप्रत्याख्यान माने एक देश, अप्रत्याख्यान माने त्याग का अभाव नहीं, मतलब या संपूर्ण त्याग या एक देश त्याग रूप नहीं होगा। त्याग रूप माने वो नियम जिसको कहते हैं हम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम, वो प्रतिज्ञा का उदय नहीं हुआ है, बाकी तो सब हो गया है, बाकी सब करता है, बाकी सब करता है ये कह रहा हूं मैं, लेकिन कभी करता है कभी नहीं करता, इसलिए उसको व्रति नहीं कहते। हमेशा के लिए उसने करने का नियम नहीं लिया है इसलिए उसको व्रति नहीं कहते। मैं कहता हूं कौन सी क्रिया है जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं करता, सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि भी, ये पांच लब्धियों में स्थित जीव, बताओ कौन सी क्रिया है नहीं करता है, सामयिक नहीं करता, उसको जो है छेदोपस्थापना, जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, उसको प्रायश्चित लेने का भाव नहीं आता, कोई उससे अपराध हो जाए तो उसको प्रायश्चित लेने का भाव नहीं आता, वो त्याग रूप परिणाम करता नहीं है या करना नहीं चाहता, परिहार विशुद्धि के लिए नाम दे रहा हूं, माने चारित्र की सारी अवस्थाओं को वो यदवा तदवा कभी कभी बराबर पालन करता है। आज भाव बन गया है तो वो कर लेगा, वो भावों में कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है, कभी भाव बिगड़ जाए तो वो भी कर लेगा भाव बिगड़ जाए तो हिंसा आदि भी कर लेगा। भरतेश वैभव आप पढ़ो तो उसमें आपको वो भरत चक्रवर्ती के सभी रूपों के दर्शन होते हैं। आप भरतेश वैभव पढ़ो, पढ़ना चाहिए, सभी रूपों के दर्शन होते हैं, माने सामायिक करता हुआ भरत चक्रवर्ती भी आपको मिलेगा उसमें, पूजा करता हुआ भरत चक्रवर्ती भी मिलेगा आपको, दान देता हुआ मुनियों को आहार दान देता हुआ भरत चक्रवर्ती भी मिलेगा, माने सामायिक करता हुआ माने शुक्ल लेश्या का परिणाम करता हुआ, ये सामायिक करना, ये शुक्ल लेश्या का मतलब जैसा है, अब आपकी है कि नहीं शुक्ल लेश्या वो आप जानो, लेकिन जो परिणाम है सामायिक का वो तो है तो शुक्ल लेश्या का परिणाम, शुक्ल लेश्या जैसा परिणाम है, ऐसी जो आप स्वाध्याय करना है ये जो है ये पीतलेश्या का परिणाम, पद्मलेश्या का परिणाम, पूजा आदि करना ये समझ लो पीतलेश्या के परिणाम है। मैं तो अभी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक श्रेणी उसकी कम कम कर रहा हूं, पहली श्रेणी जो है वो सामायिक की श्रेणी है, वो शुक्लेश्या में डाल रहा हूं, दूसरी श्रेणी स्वाध्याय की है उसको पद्मलेश्या में डाल रहा हूं, तीसरी श्रेणी पूजा आदि कार्य करने की है उसको मैं पीतलेश्या में डाल रहा हूं। अरे इनकी छोड़ो, ये सम्यक दृष्टि के छहों लेश्याएं मानी गई है, हम तो भरत चक्रवर्ती में छहों लेश्याएं दिखा सकते हैं आपको। आज जो है किसी से कोई गलती हो गई है, अपने ही मंत्रिमंडल में किसी से कोई गलती हो गई है तो वो जो डांट रहा है सम्यक दृष्टि भरत उनको, ये जो है कापोतलेश्या का परिणाम है, ये कापोतलेश्या का परिणाम है, किसी अपराधी को उसने पकड़ लिया देख लिया या कोई उस पर बहुत भाव आ गया तो अपराधी को पिटाई कर दी, दो चार थप्पड़ मार दी, अच्छे जम के ठुकाई कर दी, ऐसे काम करते हो, ऐसे काम करते हो, आतंकवादी पकड़ में आ गए कुछ आ गया, ये जो है ये नील लेश्या का परिणाम, ये भरत चक्रवर्ती का, और वो जो युद्ध क्षेत्र में चला जाए या समझ लो वो बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया, ये कृष्ण लेश्या का परिणाम है। इतनी तीव्र कषाय आई है, इतनी तीव्र कषाय आई है कि उससे रहा नहीं गया है, चक्र चला दिया, युद्ध क्षेत्र में समझ लो वो भाव की बात कर रहा हूं, चक्रवर्ती को तो मौका नहीं आता है एक खून का कतरा बहाने का मौका नहीं आता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहा नहीं सकता उसके बहाने के समझ लो वो तो जो है, माने आप ये सोचो कि बाहुबली जैसे भाई पर उसको कब्जे में लेने के लिए, उसको झुकाने के लिए, उसको शरणागत करने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सारे अपनाए थे। ये जो चक्र चलाने की नौबत तो ये बहुत बाद की बात है, पहले तो उनने अपने सेनापति को भेजा था ना, पहले तो उनने अपने मेरा, वो तो भाई है कोई बात नहीं है, वो तो आएगा ही, वैसे ही आएगा, या फिर चलो उसको भेज दो, और संधि बहुत कराने की कोशिश करी थी, आपस में उनकी मुलाकातें हुई थी मंत्रियों की, उसी में से तो ये तीन रास्ते निकले थे, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध, जल युद्ध वाले। बोलो ये सब कुछ हुआ ना, मैं कह रहा हूं युद्ध क्षेत्र में तो सबसे अंत की बात है, सबसे अंत की बात है। मैं लिखूं कहानी भरत बाहुबली की, तो इनकी जब युद्ध क्षेत्र में खड़े हो ना लड़ने के लिए, तो पहले बाहुबली से भरत के पांव पड़वाऊं
भाई साहब भाई साहब अब ये पुराणों में कथा नहीं लिखी होगी, शायद लिखी हो तो मालूम नहीं मेरे को लेकिन नहीं तो उसे पांव पड़ा, उसके बाद था ना वहां पर ऐसा होता था। महाभारत वगैरह में तो कथाएं मिलती हैं, ये अर्जुन वगैरह लड़ाई लड़ते थे और सामने द्रोणाचार्य हैं गुरु महाराज, अब क्या करे गुरु जी वो क्या नाम था उनका दादाजी का, भीष्म पितामह, अब मैं आपके ऊपर कैसे चक्र चलाऊं, मैं आपके ऊपर कैसे, ऐसे रो रो करके मिन्नत करें मैं कैसे करूं। उनने कहा नहीं, ये तो अब यहां पर तो युद्ध क्षेत्र है, यहां पर तो युद्ध के नियम चलते हैं, यहां पर तू ये मत देख। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही थी तो कृष्ण महाराज को फिर रूप बनाना पड़ा था सर्वज्ञता के दर्शन कराए थे उनने, सर्वज्ञता के दर्शन कराए थे, 18 दिन के बाद में देख ये सारा युद्ध क्षेत्र में क्या मामला तेरे को दिखेगा, सर ये तो सब मरने ही वाले, तू तो निमित्त मात्र है। कहने का मेरा ये मतलब है कि वो जो सम्यक दृष्टि है, ऐसा मैं ये बताना नहीं चाहता हूं अभी आपको, उसकी निम्न अवस्थाएं कृष्णील कापोत वाली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी उज्ज्वल अवस्थाएं कितनी उज्ज्वल अवस्थाएं। मैं कहता हूं एक बात बताओ, मैं जब आप जैसे कोई मुनि महाराज जा रहे हो, गमन कर रहे हो और आप उनको छोड़ने जा रहे हो, चप्पल पहन के जा सकते हो आप? मनाही नहीं है, लेकिन जो है आपके खुद के भाव हो जाएंगे। ये गाड़ियां लेकर के घूमते हैं उनके साथ में, ये कोई धंधे हैं? गाड़ियां लेकर के घूम रहे हो तुम उनके साथ में? बोले साहब हम छोड़ने जा रहे हैं, जैसे जब छोड़ने ऐसे छोड़ने जाते हैं, महाराज पैदल चल रहे हैं और तू गाड़ी पे चल रहा है। ये अपन भगवान की यात्रा निकालते हैं उसमें अपन चप्पल छोड़वाते हैं, ये गाड़ी घोड़े से कोई व्यवस्था आदि के लिए चलना पड़ता है, लेकिन ये कोई आर्श मार्ग नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है कि हम जो है ना, जो हमारे से उत्कृष्ट है हमारा आचरण। तो मैं ये कहता हूं जिस समय आप उनके साथ में चल रहे हो ना, जैसे वो चार हाथ जमीन देख के चल रहे, तुम भी सहज में ही चार हाथ जमीन देख के चल रहे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महाराज ना देख पाए और आप देख लो कोई चीज, कोई जीव को देख लो, और जो है आप बाजू में हो और आपने देख लिया तो महाराज को कोहे नहीं मार दोगे, महाराज अच्छा हुआ तुमने बता दिया। ये कहना मैं चाह रहा हूं कि सर्वथा वो ऐसे भाव नहीं करता है, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। सम्यक दृष्टि के ये चारित्र संबंधी भाव उसको नहीं आते हैं, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। सम्यक दृष्टि को ये भाव नहीं आते, नियम रूप नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसी का नाम तो सम्यक तो है, भाव रूप तो उसको सदा काल बने रहते। बल्कि ऐसा होता है, मैं बताऊं आपको एक थ्योरी है, थ्योरी ये है कि जो चीज जिसके अभाव में होती है ना, जिसको अभाव होता है जिस चीज का, उसकी याद उसको ज्यादा आती है, और जो जो जिस चीज में रहता है उसको उसका कोई महिमा नहीं आती है। तो ऐसे परिणाम हो सकते हैं, कोई मुनि महाराज हो, मैं उदाहरण के लिए सब घटनाएं बता रहा हूं आपको, मुनि महाराज हो, उनका परिणाम में हीनता हो कदाचित कोई समय,
हीनता हो परिणाम में और गृहस्थ है उसके परिणाम उज्जवल हो। मुनिराज इसलिए मालूम ना आपको, मुनिराज गमन कर रहे हो और आप सामायिक कर रहे हो, तो आपको शास्त्र ये कहता है कि आप जो है अपनी सामायिक छोड़ के उनके दर्शन करने पांव पड़ने मत जाओ। क्यों नहीं जाए जी, वो हमसे बड़े हैं क्या? नहीं, अरे तू बड़ा है, अभी 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 के हिसाब से चल, अभी के हिसाब से चल, तू बड़ा है अभी। वो जो है वो तो गमन कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, राग क्रिया चल रही है, तेरे तेरी तो वितराग क्रिया चल रही है, इस सामायिक की क्रिया। इसलिए तू जो है अभी अभी ये मत सोच, वो सम्यक दृष्टि कभी आर्थ ध्यान में चल रहे हो मुनिराज, आर्थ ध्यान हो सकता है मुनिराज को छठे गुण स्थान में, वो आर्थ ध्यान में चल रहे हो और तुम शुक्ल लेस्या में चल रहे हो, क्या होगा, क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे? इसलिए जो है भाव रूप से कभी कभी तो उसके परिणाम बहुत उज्जवल होते हैं, बहुत उज्जवल होते हैं कभी कभी। भरत चक्रवर्ती के भरतेश वैभव में यहां तक लिखा है कि उसके ऐसे परिणाम हो जाते थे, भरत जी है ना, भरत जी, इनकी इनकी परिणति जो है ऐसा ऐसी परिणति थी, इनकी चुटकियों में बदलती थी, चुटकियों में, जैसे उनने चुटकियों में केवल ज्ञान लिया था ना दीक्षा लेते से ही, ऐसे इनके परिणाम गृहस्थ अवस्था में भी चुटकियों में बदलते थे। अब वो जो 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 घटना वो है ना, समझ, एक घटना आपको ये चुटकियों में बदलने वाली तो केवल ज्ञान वाली घटना वाली, दूसरी घटना चुटकियों में अभी भाई दिखता था और अभी दुश्मन दिखने लगा, चक्र चला दिया, और उसके बाद की घटना हमको नहीं मालूम, जब बाहुबली दीक्षा लेने जाने लगे तो वो भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोए। ये भी कथा लिखी है कि नहीं लिखी मेरे को नहीं मालूम, वो भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोए इस बात के लिए, भाई भाई अरे तू अभी तो मारने को देख रहा था, अरे वो अलग क्षण था, वो अलग बात थी, अभी तो मेरा भाई, मेरा भाई, अरे तेरा भाई अभी कब नहीं था। इसलिए जो है ना ये जो घटनाएं होती है ना, कभी कभी हम गुस्से में कोई किसी को कुछ कह देवे तो जो है ना हम ये बोलते हैं और बाद में हम माफी मांगने लगे, अभी अभी तो हमने आपको गाली दे दी और हम बाद में माफी मांगने लगे, तो लोग बोलते अच्छा पहले याद नहीं आई, पहले याद नहीं आई जब गाली दे रहा था, जब यार नहीं याद आई तभी तो गाली दी। तू अभी देखना, वर्तमान देखना यार, मेरे को अभी प्रायश्चित का भाव में माफी मांग रहा हूं, ये देखना, यही तो मैं कह रहा हूं। आप बाहुबली गए, अच्छा मेरे को तो बहरा के दिला दिया और अब जो है रो रहा है, रो रो के दिखा रहा है। वो भरत चक्रवर्ती को ये जो है ना, ये ऐसी क्षणिक आवेग वाले उनका उनकी प्रकृति थी। शुद्धोपयोग भी क्षणिक में किया, केवल ज्ञान क्षण में कर लिया। इसलिए जो उनकी ये जो प्रकृति के हर सम्यक दृष्टि के लिए नई घटना समझना, ये जो भरत चक्रवर्ती का जो औदयिक भाव का चरित्र है ये हर सम्यक दृष्टि का नहीं समझ लेना, बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। तो ये जो भरत चक्रवर्ती है इसको तो बहुत क्षण माने, बल्कि वो राज काज करते हुए भरत जी घर में बैरागी, बोलो ये घटना भी उनके साथ घर में बैरागी, वो सब करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसी ऐसी उनकी प्रकृति थी। एक घटना का जो चित्रण उसमें भरतेश वैभव में है, मैंने आपको पहले भी बताया शायद एक आध बार, अभी भोग भोग करके उठे चक्रवर्ती और उसी समय बिस्तर से उठे और बिस्तर से नीचे यहां पर अपने वहीं पर बिस्तर के बाजू में चटाई डाल करके बैठ गए, के बिना चटाई के बैठ गए और सामायिक करने लगे। ये तो घटना उल्लिखित है भरतेश वैभव, ये जो घटना मैं बता रहा हूं ना इसका उल्लेख है। और एक बार अभी मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था, गुरुदेव ने इस घटना का याद किया अपने प्रवचन में कि भरतेश वैभव मा तो एवं कई उच्छे भरतेश वैभव में तो ऐसा कहा है भोग भोगी ने, भोग भोगी ने उठी और ऐसा बिल्कुल ऐसे बिस्तर से उठे और बाजू में बैठ गए सामायिक करने के लिए और अपनी भगवान आत्मा का ध्यान करने के लिए। अरे एक क्षण पहले तुम क्या कर रहे थे और अभी एक क्षण बाद तुम्हारी कैसी दशा हो गई, समय समय की बात है। और बहुत ग्लानी से भरता है जीव, पश्चाताप से भरता है। कोई भोग भोगता है ना तो भोग भोगने के बाद में ग्लानी से भरता है, जीव की प्रकृति है ये। और वो ग्लानी से भरता है, वो भरत चक्रवर्ती ने उस ग्लानी का उपयोग सदुपयोग कर लिया। उस समय वो प्रायश्चित के भाव में आता है तो वो प्रायश्चित के भाव का आप उस विशुद्धि का उपयोग करो, उस विशुद्धि को खाली मत जाने दो, बेकार मत जाने दो। ये देखना, ये सब बातों का ये तुलना करना अथवा उलाहना देना, अरे वाह बड़ा सामायिक करने बैठ गया अभी तो एक 5 मिनट पहले कैसे क्या, तो ये जो है ना ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। नॉनसेंस बात है मतलब भाई परे जो भाव की स्थिति है और एक भाव का खेल है। हाँ क्या बोले हैं जी। अरे मैं कह रहा हूं तुम खुद मारने को देख रहे थे अभी। और मैंने मजेदार बात तो ये है कि वो रामचंद्र जी खुद नहीं जा रहे, जिससे मरवाया इसमें वो करता भले ही रामचंद्र जी ना हो लेकिन उनका कारक के रूप में उपयोग उनने किया है। कृतकारित अनुमोदना है ना, तो ये अनुमोदना नहीं थी अकेले रामचंद्र जी की, कारित भी था। वो कृत तो था लक्ष्मण का लेकिन ये रावण को मारा, ये कारित और अनुमोदना रूप कार्य तो रामचंद्र जी के भी थे, कारित और अनुमोदना रूप। और वो जो है भेज रहे क्या क्या मतलब अवस्थाओं को, मैं ये कह रहा हूं इसका नाम यदि हम बहुत स्थूलता से कहें तो ये सम्यक दृष्टि का चरित्र होता है। उसको अपनी गलती तुरंत समझ में आती है, उसको अपनी गलती तुरंत समझ में आती है, उसको अपनी गलती नहीं अपनी कमजोरी का भी एहसास, उसको अपनी कषाय का एहसास उसको तुरंत होता। भैया वो तो कषाय का काम था, अब वो मान नहीं रहा था क्या करें। अब वो मान नहीं रहा था क्या करें, इसलिए चक्र चलाना पड़ा। अब मान नहीं रहा था इसलिए उस पर तीर चलाना पड़ा, मान नहीं रहा था इसलिए लक्ष्मण को भेजना पड़ा, मान नहीं रहा था। लेकिन अब तो जो मृत्यु सैया पे पड़ा है तो अब तो मार नहीं रहा, मान नहीं रहा, अब तो मान गया है। तो अब जो मान गया तो जा उससे कुछ शिक्षा लेकर गया। ये भावात्मक उसका बहुत जोरदार चरित्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं होता ये व्याख्यान बहुत किया जाता है। उसका तो ये सारा मैंने आपको बताया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र के रूप में तो चारित्र होता है। दूसरी व्याख्यान ये किया जाता है क्यों चारित्र नहीं हो, अविरति है, अविरति है, अविरति है, अविरति है, इसलिए चारित्र नहीं होता है। आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद जी का नाम सुना, कौन विद्यानंद जी, दिल्ली वाले नहीं। श्लोक वार्तिक लिखने वाले, श्लोक वार्तिका अलंकार लिखने वाले, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं विद्यानंद जी आचार्य के। श्लोक वार्तिक है, अष्ट सहस्त्री उनकी है, अष्ट सहस्त्री, और तुम्हारे युक्ति अनुशासन, आप्तमीमांसा उनका है, वो तो समंत भद्र का है, उसकी टीका है वो अष्ट सहस्त्री, और बहुत सारे ग्रंथ युक्ति अनुशासन वगैरह इनके ग्रंथ उनका है, विद्यानंदी आचार्य का। अभी क्या हुआ, ये लोग तो बहुत मुनि महाराज लोग तो सब यही कहते हैं कि चारित्र नहीं होता, चारित्र नहीं होता, अविरति ये वो, यहां पर अपने विशुद्ध सागर जी आए थे वो भी यही मानते थे, वो भी बिल्कुल शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में नहीं होता, ये बात तो ये तो उनकी भी धारणा यही है। तो जो है लेकिन अभी हम लोगों ने जब कारंजा में गोष्ठी करी तो कारंजा में वो आई थी बाहुबली कुंभोज बाहुबली से, वो एक ब्रह्मचारी बहन है सुजाता, सुजाता आई थी, उसने हमारे साथ में पीएचडी करी है, हमारी पीएचडी और उसकी पीएचडी एक साथ रजिस्टर हुई थी, और उसके भी गुरुजी जो है या क्या बोलते गाइड वो वीर सागर है, हमारे भी वीर सागर है उसने तो चुटकियों में कर ली थी पीएचडी, मेरे को तो 6 साल लगे थे, उसने तो 2-3 साल में कर डाली थी। उसकी संस्कृत वगैरह पे बहुत अच्छी कमांड है, धवला वगैरह का तो उसको इतना गहन अध्ययन है, उसके सारे वीडियो हैं, उसके वीडियो हैं, और ये पूरे धवला ग्रंथ उसने पढ़े हैं, उनके वीडियो हैं। वो कल्पना अपनी ये है ना, बिमला बेन तो वो उसके वीडियो देख देख करके वो जो है ना उसका स्वाध्याय करती हैं, धवला वगैरह उनकी वीडियो सुन देखती रहती हैं, और ऐसे ही शायद इनकी उज्ज्वला बेन के भी हैं, उज्ज्वला बेन की भी ऐसी वीडियो हैं, मतलब आप चाहो तो वो उनका वीडियो सामने रख करके आप अध्ययन कर सकते हैं, बहुत वीडियो ऑडियो अकेले व्याख्यान नहीं, वीडियो बोलते हुए साक्षात ऐसे, तो जो है मैंने नहीं सुने हैं, लेकिन मैंने उनके सामने तो सुना भी है, बिमला बेन के सामने एक आध बार जयपुर गया था तो वो बोले हम सुनते हैं, तो मैं भी उनके यहाँ, वो जाते हैं तो भोजन वगैरह को आमंत्रित करती है, तो उनके यहाँ जाते हैं तो फिर वो सुनाती भी है कहानी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले हम ये कर रहे हैं, जबकि उनको माइग्रेन वगैरह की तकलीफ है बहुत, और ये करना योग का स्वाध्याय, धवला का स्वाध्याय ऐसा करती। तो क्या बता रहा था मैं, तो वो जो है ना वो सुजाता बेन ने ये बताया अपने संजय जी है ना, उनकी गुरु है वो जो बाहुबली में रहे ना ये संजय जी, और वहीं से तो जयपुर गए थे, तो ये जो है ना उनको ये पढ़ाती थी संजय जी को, तो जो है वो क्या बोली कि बोले अभी हम विशुद्ध सागर जी के पास गए थे, उनने ये आप थे ना भैया भी थे, तो वो ये बताने लगी कि विशुद्ध सागर जी के पास में हम गए थे और उनको एक प्रमाण आचार्य का प्रमाण मिला, पंडितों के प्रमाण तो ढेर सारे हैं लेकिन आचार्य का प्रमाण मिला, और उन्होंने उसमें विद्यानंदी आचार्य का प्रमाण मिला, और बोले अभी हम गए थे तो हमको दिखाया, और एक बार नहीं 3-3 बार उसका स्मरण किया विशुद्ध सागर जी ने, बोले यार ये तो प्रमाण आचार्य का प्रमाण मिल गया, विशुद्ध सागर जी खुद बता रहे, ये बाद की बात है, मतलब ये अपने नागपुर के आने के बाद की बात है। तो बोले उनने वो प्रमाण दिया, युक्त्यनुशासन का एक 52 नंबर का श्लोक है, 52 नंबर का श्लोक है, उस 52 नंबर के श्लोक की जब टीका लिखी है उन्होंने खुद ही, शायद ग्रंथ भी उनका है टीका भी उनकी ही खुद की, सोपग्य टीका है युक्त्यनुशासन, हाँ तो फिर संबंधभद्र का ग्रंथ है और टीका विद्यानंद जी की है, तो विद्यानंद जी की जो टीका है उसमें उन्होंने उसका बहुत बड़ी टीका लिखी है, कम से कम 5-6 पेज की टीका है, और वो टीका में उन्होंने वो सारा जो है ना ये उल्लेख किया, तो जब उन्होंने ये उल्लेख किया तो हमने उनसे मांगा, तो अब वो क्या ग्रंथ ढूंढ लिया, मिल गया, फिर जो है बहुत विचार आया हमारे को, अरे यार आखिर आचार्य ने कहा क्या है, उसने कहा क्या है, तो ये खूब विचार आया, उनने तो एक उल्लेख मात्र किया था और ये बताया था ऐसा ऐसा है उसमें, और उसमें आया है। उसके बाद में जब हमने यहाँ आए तो बहुत देखने लगे, तो फिर उसका हमको वो टीका भी पढ़ी, उसमें वो उल्लेख भी समझ में आ गया, फिर हमको लगा यार इसका अनुवाद होना चाहिए, तो पहले उतने से अंश का अनुवाद किया, फिर उसका भूमिका चाहिए तो हमने बोला यार उसका अनुवाद पूरा होना चाहिए, तो संयम भोपाल में था, इसकी संस्कृत बहुत अच्छी है, संयम की जो है ना संस्कृत बहुत अच्छी है, मेरे को जो कुछ पूछना रहता तो उससे पूछता हूँ तो मैंने उसको भेजा, मैंने बोला भैया तू इसका अनुवाद कर दे मेरे को, तो उसने कम से कम नहीं तो बहुत 5-6 पेज की थी, उसने 15 दिन में मेरे को वो करके, थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिलता था उसने 15 दिन में मेरे को वो भेजा, उसके बाद में फिर मैंने भी उसको मिलान किया, उसमें कुछ और संशोधन वगैरह जो करना था मुझे, मैंने वो किए, और वो जो अंश है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखो उसका जो अंश है ना है, मैंने डाला था तुम्हारे गोष्ठी, हाँ गोष्ठी में डाला था मैंने, आप देख लेना। और इसकी हेडिंग डाली है चतुर्थ गुणस्थान में भी कथंचित संयम होता है, ये हेडिंग है इसकी। चतुर्थ गुणस्थान में भी सर्वथा अविरति नहीं है, पंचम गुणस्थान की तो संयमा संयम है ही, लेकिन यहां पर हम बिल्कुल संयम का वो संयमा संयम भी नहीं कहेंगे, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है और उससे बाह्य में भी संयम प्रकट हुआ है, इसलिए कथनचित संयम होता है ऐसा इन्होंने बताया। और ये उनका वाक्य बोल करके आचार्य विद्यानंदी लिखा है, ये हेडिंग है, शीर्षक है। अब मैं उसका अंश पढ़ रहा हूं। राग द्वेष मूलक ईर्ष्या असूया मद मान आदि दोष संसार के हेतु हैं, सकल विक्षेपकारी हैं, स्वर्ग अपवर्ग प्राप्ति में बाधक हैं, उनके होने पर मन का समत्व समता भाव नष्ट हो जाता है, उसके नष्ट होने से समाधि भी बाधित हो जाती है, जिससे समाधि मूलक निर्वाण की प्राप्ति किसी को भी नहीं होती। इसलिए मोक्ष के कारण मन के समत्व लक्षण वाली, देखो ना इस पे ज्यादा ध्यान देना, मन का समत्व, समत्व लक्षण वाली समाधि को चाहते हुए भी जीवादि वस्तु के अनेकांतात्मकत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये तो अभी उसकी वो जो श्लोक है ना उसकी उत्थानिका बनी है, परंतु यह भी समीचीन नहीं है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांत धर्माभिनिवेश मूला रागादयो हंकृति जा जनानाम एकांत हानाच सयत्तदेव स्वाभाविकत्वाच समम मनस्ते। 52 नंबर का श्लोक। टीका, एकांत धर्म में दृढ़ आग्रह, एकांत धर्माभिनिवेश कहलाता है, एकांत धर्म में दृढ़ आग्रह होना ये एकांत धर्माभिनिवेश कहलाता है। वस्तु सर्वथा नित्य है, कथिंचित अनित्य नहीं, कथिंचित भी अनित्य नहीं, ऐसा मिथ्यात्व युक्त श्रद्धान मिथ्या दर्शन कहलाता है। ऐसे एकांत धर्माभिनिवेश मूलक रागादि से राग द्वेष माया मान, अर्थात देखो क्या नाम दिया, राग द्वेष माया मान, राग माने लोभ, द्वेष माने क्रोध, माया और मान, ये आचार्य भगवान ने चार कषाय के नाम दिए, कौन कौन से, राग द्वेष माया मान, अर्थात ये फिर हिंदी हमने कर दी, क्रोध मान माया लोभ रूपी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजलन कषायों तथा नो कषायों का ग्रहण होता है। इसके एकांत धर्माभिनिवेश के कारण ये सब कषायों का जन्म होता है। शंका, रागादि अर्थात लोभादि दोष मिथ्या दर्शन मूलक कैसे हो सकते हैं? आप बोल रहे हो साहब ये क्रोधादि कषायें मिथ्यात्व मूलक हैं, ये कैसे हो सकते हैं? बोले क्यों, क्योंकि वे तो असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक मिथ्या दर्शन के अभाव में भी होते हैं। देखो कितना स्पष्ट प्रश्न है, ये आचार्य भगवान ने प्रश्न खड़ा किया, ये बिल्कुल शब्दशय अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं आपको, एक अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जो शब्दशय आचार्य का अनुवाद है बस वही पूरा पढ़ रहे हैं। समाधान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनंत संसार के कारण रूप, देखो जो तर्क हम देते हैं ना वही सारे तर्क दिए उनने, अनंत संसार के कारण रूप रागादि मिथ्या दर्शन के अभाव में संभव नहीं है। अनंत संसार के कारण रूप रागादि नहीं होते हैं ना, तो इतनी वितरागता हुई के नहीं हुई उसको, अतः उनकी मिथ्या दर्शन मूलकता सिद्ध है, इसलिए इनकी जो मिथ्या दर्शन मूलकता है अनंत रागादि की वो सिद्ध है। यद्यपि अन्यत्र असंयत सम्यक दृष्टि आदि में क्रमशः असंयम प्रमाद कषाय परिणाम मूलक लोभड़ी होते हैं, लोभ भी होते हैं, लोभड़ी नहीं लोभ भी होते हैं, तथापि मिथ्या दृष्टि में वे लोभादि मिथ्या दर्शन के सद्भाव में ही होते हैं। यद्यपि बाद वालों को जो कषायें हो रही है ना, वो कषायें मिथ्या दृष्टि को यदि देखेंगे तो वो मिथ्या दर्शन के ही कारण हो रही है, सब कषायें, चारों कषायें। इससे ही उनकी मिथ्या दर्शन मूलकता सिद्ध होती है। फिर दूसरी शंका, यदि ऐसा है तो उदासीन अवस्था में भी मिथ्या दृष्टि एकांतवादियों को भी रागादि उत्पन्न होंगे? यदि ऐसा है तो उदासीन अवस्था में मिथ्या दृष्टि, देखो माने एकांतवादी है मिथ्या दृष्टि है, उनकी उदासीन अवस्था माने यदि वो मिथ्या दृष्टि सामायिक आदि कार्य कर रहा है तो उसमें भी उसको रागादि उत्पन्न होंगे? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अहंकृतिजा, अहंकृतिजा इसका मतलब क्या, अहंकृतिजा अर्थात वे अहंकार से उत्पन्न होते हैं, ऐसा वचन है। क्या मतलब, ये जो सामायिक कर रहा है ना मिथ्या दृष्टि, इसको धर्म मत समझ लेना गलती से, ये अहंकृतिजा भाव से उत्पन्न है, हाँ कर रहा हूं हाँ। ये ऐसा उसको जैसा स्त्री पुत्र में उसको अहंकृतिजा, व्यापार धंधे में उसको अहंकृतिजा का भाव होता है, ऐसे धर्म कार्यों में भी उसको अहंकृतिजा का भाव होता है, मैं करता हूं। अहंकृति अर्थात अहंकार, वह मैं इसका स्वामी हूं ऐसे जीव परिणाम की सामर्थ्य से उत्पन्न होता है, ये मेरे भोग्य हैं ऐसा आत्म परिणाम ममकार कहा गया है। अहंकार तो ये कहा गया, ये मैंने इनका किया, और ये जो है ये ऐसा आत्म परिणाम ममकार कहा गया, कैसा, ये मेरे भोग्य हैं। इसलिए मिथ्या दर्शन रूप परिणाम ही जब ममकार अहंकार के साथ उत्पन्न होता है तब ही वह रागादि को उत्पन्न करता है, उदासीन दशा में नहीं, उदासीन दशा में उसको ऐसे परिणाम नहीं होते। इस प्रकार एकांत अभिनिवेश रूप महामोह राजा से उत्पन्न ही रागादि होते हैं वही कहा है। ममकार और अहंकार ये दो मोहिनी राजा के सचिव हैं। अहंकार और ममकार ये मोहिनी राजा के सचिव हैं। अब जो जिस समय अनुवाद किया था ना उस समय इतना मजा नहीं आया था जितना अभी पढ़ने में आ रहा है। उस समय तो अब साथ सामने है, बस उसका अनुवाद करते चलो, अनुवाद सही होना चाहिए। अभी जब पढ़ते हैं तो भाव लगता है। जो सदा सकल रागादि परिवार के, सुनो कितनी बढ़िया बात कह रहे, अहंकार और ममकार ये दो मोहिनी राजा के सचिव हैं, जो सदा सकल रागादि परिवार के परिपोषण करने में तत्पर रहते हैं। ये हमेशा रागादि का परिवार को ही जो है, जैसे हम अपने परिवार का पोषण करते रहते हैं ना, अब इनके पास में कुछ नहीं है तो ये अपने रागादि को पुष्ट करते रहते हैं। शंका, तीसरी शंका आई है, भले ही मोहिजनों के रागादि अहंकार से उत्पन्न होते हैं परंतु वीतरागी जनों को तो अहंकार के होने पर भी, अहंकार माने मुनियों को भी मान आदि कषाय है ना, होने पर भी वे उसे कैसे उत्पन्न करते हैं? तो उनको जो है, उनको तो ज्ञान है, सम्यक तो है, सब है, फिर ये कैसे उत्पन्न करते हैं? समाधान, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, मिथ्या दर्शनादि से सहित होने पर ही अहंकार की रागादि उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, उससे रहित होने पर सामर्थ्य नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी कारण, देखना कितना बढ़िया तर्क है, सभी कारण कार्य को उत्पन्न करें, सभी कारण निमित्त कारण कार्य को उत्पन्न नहीं करते। जैसे किंचित तुस से बनाए गए कोयले की अग्नि में, थोड़ा सा तुस लिया, घास ली थोड़ी सी, और उससे जो है बनाया हमने उसकी, वो बना लेते ना ऐसी लोई टाइप की घास की, और उसको जलाया, तो अग्नि में किसी को जलाने की सामर्थ्य नहीं होती है, बोले साहब अग्नि में तो जलाने की सामर्थ है, लेकिन अब किंचित तुझसे बनाया गया हो, बनाई हो अग्नि, तो उसमें क्या ताकत है। चौथी शंका, एकांत अभिनिवेश मिथ्या दर्शन है, यह कैसे निश्चित होता है। ये शंका, उत्तर, क्योंकि वस्तु का अनेकांत पना ही प्रमाण से निश्चित होता है। सम्यक नैसे ही नैसे भी प्रतिपक्ष की अपेक्षा सहित सम्यक एकांत की ही व्यवस्था होती है, अतः एकांत अभिनिवेश का मिथ्या दर्शन पना सिद्ध है। यह पहले से ही निर्णीत प्राय है, ये निर्णीत है कि एकांत अभिनिवेश का ही मिथ्या दर्शन पना सिद्ध होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को एकांत का अभाव होने से और उसके विरोधी अनेकांत का निश्चय होने से, सम्यक दृष्टि को एकांत का अभाव है, अनेकांत का निश्चय है, एकांत का अभाव होने से तज्जनित जो कुछ भी एकांत अभिनिवेश होता है वह उसे नहीं होता। एकांत रूप धर्म जो एकांत अभिनिवेश का विषयभूत है, उसके अभाव में जो वास्तविक रूप आत्मा का यथार्थ दर्शन है, देखो जो वास्तविक रूप आत्मा का यथार्थ दर्शन है, वही एकांत अभिनिवेश का अभाव अर्थात सम्यक दर्शन का सद्भाव है। ये देखो, ये अनुभव की बात आई कि नहीं, यथार्थ दर्शन है, उससे ही उसका स्वाभाविक पना सिद्ध होता है। आत्मा का स्वाभाविक पना होने से समता स्वरूप मन की भी सिद्धि होती है। इस प्रकार हे अरहत प्रभु, स्तुति है, ये युक्त्यनुशासन स्तुति है भगवान की, तो बोल रहे हे अरहत प्रभु, आपके युक्त्यनुशासन में सम्यक दृष्टि का समता स्वरूप मन सिद्ध होता है, ऐसा वाक्यार्थ है। सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वाला, उसका भी ये समता स्वरूप मन, मन अभी वचन काय का हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसका मन है। संसारी जीवों को दर्शन मोहोदय मूलक चारित्र मोहोदय से उत्पन्न होने वाले रागादि अस्वाभाविक ही होते हैं। किसको? संसारी जीवों को दर्शन मोहोदय से के मूलक जो चारित्र मोहोदय से उत्पन्न होने वाले रागादि भी है ना, वो अस्वाभाविक ही होते हैं, क्योंकि उनका औदयिक पना ही माना गया है। तथा दर्शन मोह की हानि होने पर चारित्र मोह की हानि पूर्वक रागादि का अभाव होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणामों का स्वाभाविक पना होता है। उस सम्यक दर्शन का औपशमिकत्व, छायोपशमिकत्व या छायिकत्व ही आत्मस्वरूप होने से स्वाभाविकत्व है। सम्यक ज्ञान के भी छायोपशमिकत्व या छायिकत्व को जानना चाहिए। सम्यक ज्ञान में भी ये छायोपशमिकत्व और छायिकत्व केवल ज्ञान हो जाए तो छायिकत्व। सम्यक चारित्र में तो सम्यक दर्शन के समान औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक तीनों भाव का स्वाभाविकत्व होता है। यहां इनका पारनामिकत्व रूप स्वाभाविकत्व नहीं समझना चाहिए। देखो कितनी बिल्कुल मेजर, कई जगह ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी जी की भाषा निकल रही है, मैंने स्वामी जी की ऐसी भाषा निकलती है, वो भाषा बिल्कुल ये आचार्य भगवान के मुख से निकल रही है। देखो, क्योंकि उसका कर्मोपशमादि से निरपेक्षत्व होता है। शंका, कौन सी शंका आई? पांचवी आ गई, छठी हो गई। असंयत सम्यक दृष्टि को, अभी अभी जो वो बात मूल बात चारित्र वाली कहना है ना, वो आने वाली है। हमारा एक दोस्त है अशोक गोयल, उसने ये पढ़ा तो उसका जवाब आया, यार मैं बहुत देर तक पढ़ता गया, जो मूल बात तुम कह रहे हो चौथे गुणस्थान में भी कथनचित असंयम नहीं होता है या कथनचित संयम होता है, वो तो आई नहीं। लेकिन बोले उसके बाद में जब बहुत देर के बाद में आई तो मैं तो उछल गया। देखो, असंयत सम्यक अब आने वाला है, भाई उसकी भूमिका बन रही है। सर्व मन से असंयम रूप राग द्वेष का अभाव होता है, अतः वहां यह कैसे संभव है? क्या बोल रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि को सर्व मन से असंयम रूप राग द्वेष का सद्भाव होता है,
तो वहां ये कैसे संभव है चौथे गुणस्थान में, ये जो आप समता भाव कह रहे हो ये कैसे संभव है? समाधान, किसी एकांत धर्म में राग के अभाव से और अन्यत्र किसी एकांत धर्म में द्वेष के अभाव से विवक्षित अविवक्षित एकांतों में उदासीनता की सिद्धि होने पर अविवक्षित का भी निराकरण नहीं होने से, उतने मात्र मन के समत्व का सद्भाव होने से वहां भी संभव है। चौथे गुणस्थान में भी ये मन का समत्व संभव है। अगली शंका, सातवीं शंका, इस प्रकार तो असंयत सम्यक दृष्टि को भी संयत प्रसंग बने का प्रसंग आ जाएगा। क्या लिख रहे हैं? आया ना प्रश्न, इस प्रकार तो असंयत सम्यक दृष्टि को भी संयत बने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि मन के समत्व को ही तो संयम का स्वरूप माना गया है। संयम किसे कहते हैं? समता भाव के साथ में यम होना, उसका नाम संयम है। तो बोले ये तो सम्यक दृष्टि को भी हो जाएगा संयम। समाधान, तो ऐसा कौन कहता है कि अविरत सम्यक दृष्टि को सर्वथा संयम का अभाव होता है? बोलो, ये विद्यानंदी आचार्य का एक एक शब्द है, किस भाषा में आ रहा है? जब उसने ये कहा कि असंयम सम्यक दृष्टि को भी इसका प्रसंग आ जाएगा संयम का, तो वो ये कह रहे हैं ऐसा कौन कहता है कि असंयम सम्यक दृष्टि को सर्वथा संयम का अभाव है? देखो, तो ऐसा कौन कहता है कि अविरत सम्यक दृष्टि को सर्वथा संयम का अभाव होता है? उसको भी अनंतानुबंधी कषायात्मक असंयम का अभाव होने से संयत पने की सिद्धि होती है। आचार्य का वचन बहुत चाहिए था ना तुम्हारे को, आचार्य का वचन। फिर अगली शंका आठवीं, फिर उसको असंयतत्व तो कैसे माना गया? जब तुमने संयम की सिद्धि कर दी तो असंयम कैसे मानते हो? अरे यार, वो विवक्षा अलग है। समाधान, उसको चतुर्थ गुणस्थान में 12 प्रकार का अनंतानुबंधी के अभाव में संयम, अनंतानुबंधी के अभाव में संयम और 12 कषायों के विद्यमान होने से असंयम का सद्भाव है। सुनो, इस विवक्षा से मुनि महाराज को भी 6-7 गुणस्थान में वो संजुलन कषाय के सद्भाव होने से वो भी उनका असंयम पना है। स्थूल रूप से कहते हैं कि वो संयमी है। ये बात और भी कहीं पर आई है मालूम, एक जगह तो ऐसा लिखा है कि यार 6-7 गुणस्थान में भी फिर चारित्र नहीं कहना चाहिए, एक देश चारित्र कहना चाहिए, ऐसा लिखा। बोले कहा तो है, 6 चारित्र कहा है ना, इसका अर्थ ही एक देश चारित्र है। क्या बोला? 6 है ना, तो संजुलन कसाय के उदय के बिना 6 बनता नहीं है, इसलिए वो 6 चारित्र इसका एक देश चारित्र ही है हुआ। ये तो ये जो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा वो पंचम गुणस्थान वर्ती को संयम ज्यादा है, पंचम गुणस्थान की अपेक्षा उनको महासंयम है, महाव्रत कह दिया इसलिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो कषाय है उसका वो भी संयम है, जो कषाय है उसका नाम भी संयम है, ये अर्थ नहीं हो गया उसका। क्या कह रहे आगे? इसी प्रकार आगे पंचम गुणस्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषायात्मक असंयम का अभाव होने से और प्रत्याख्यान और संजुलन कषायात्मक असंयम का सद्भाव होने से आगमानुसार संयमा संयम सम्यक दृष्टि सिद्ध होता, संयता संयत सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब आगे देखो कितना बढ़िया बात, यदि ऐसा है तो प्रमत्त संयत से लेकर सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत संयता संयत माना जाएगा। कहां? 6 गुणस्थान से लेकर 10 गुणस्थान तक भी संयमा संयम मानना चाहिए। ये तो मेरे, मैं बोल रहा हूं ना, अनुवाद करते समय इतना ध्यान नहीं आया था कि इसमें यह भी लिखा है, इसमें यह भी लिखा है, लेकिन ये अभी पढ़ते समय मेरे को बहुत उसका भाव भाषण विशेष हो रहा है। वहां भी संजलन कषायात्मक तथा नो कषायात्मक असंयम का सद्भाव होता है, वहां भी मानना पड़ेगा। तो उसके लिए आचार्य का जवाब बहुत बैलेंस जवाब है, नहीं समाधान नहीं। संजलन कषाय आदि की असंयम रूप से विवक्षा नहीं होने से, उसको जो है संजलन कषाय को असंयम नहीं माना है। इसको मैं कह रहा हूं अचारित्र तो कह सकते हो आप, इसलिए चारित्र और संयम में फर्क। चलो वह कषाय, वो बता दे रहे हैं है क्या चक्कर, वह कषाय पानी की रेखा के समान और 12 प्रकार के मोह के अभाव रूप संयम का अविरोधी होने से, तथा माने अविरोधी है वो, संयम में बाधा नहीं कर रही है वो कषाय, तथा परम संयम की प्राप्ति के लिए अनुकूल होने से, परम संयम वो मुनि महाराजों को ही होता है, ऐसा कषाय प्रावृत शास्त्र से जानना चाहिए। वहां पर इस कारण से कषाय प्रावृत में उसका जवाब दिया है। इसलिए जैसे असंयत सम्यक दृष्टि को स्वानुरूप अपनी अवस्था के अनुरूप मनः साम्य की अपेक्षा समता रूप मन की सिद्धि होती है, उसी प्रकार संयता संयत को भी 9 प्रकार से सिद्धि होती है, अतः वहां भी किंचित असंभाव्य नहीं है। इस प्रकार अनेकांत रूप युक्ति का अनुशासन सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? जितना जितना रागादि का निमित्त नहीं होता है उतना उतना मन के समत्व का निमित्त होता है। युक्ति अनुशासन श्लोक नंबर 52 की आचार्य विद्यानंदी कृत संस्कृत टीका का शब्दशः हिंदी अनुवाद। बहुत मजा है, वाह। चलो विशेष चर्चा आगे, टाइम पर हो गया।